पृष्ठ संख्या 260। एशिया की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। शीत युद्ध के संदर्भ में एशियाई देशों के अंदर और उनके बीच घटित घटनाचक्र के बारे में पहले उल्लेख किया जा चुका है। इस संबंध में कुछ अन्य घटनाओं और तथ्यों का उल्लेख करना भी जरूरी है जो इस क्षेत्र के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियां। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने के बाद एशियाई देशों के विकास की गति और प्रवृत्तियां भिन्न-भिन्न रही है। कहा जा सकता है कि एशिया में हुए राजनीतिक विकास में सामान्य रूप से लोकतांत्रिक प्रणालियों की स्थापना को प्रमुखता दी गई, किंतु यह मार्ग ना तो आसान था और ना ही प्रतिकूलताओं के प्रहार से मुक्त था। इस क्षेत्र के अधिकतर देशों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अस्थायी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली कायम नहीं हो सकी। भारत कुछ ऐसे गिने चुने देशों में से है जहां स्वतंत्र राष्ट्र के इसके इतिहास में निरंतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रही है। कुछ देशों जैसे पाकिस्तान में लंबे समय तक सैनिक शासन कायम रहे। यहाँ लोकतांत्रिक राष्ट्रपति के रूप में जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन के लगभग 10 वर्षों के बाद हाल ही में हुए चुनावों के बाद हुआ है। वर्मा 1989 से म्यांमार ने 1948 में राजनैतिक लोकतंत्र की शुरुआत की, किंतु 1960 के दशक के आरंभ में वह एक दलीय शासन के अधीन आ गया जिसमें सैन्य शक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। मई 1990 में म्यांमार में चुनाव हुए जिसमें दाव ऑंग सान सूची के नेतृत्व वाले दल ने बहुमत प्राप्त किया, लेकिन चुनावों के बाद भी शासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1991 में सू की को दमन के विरुद्ध संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक होने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसे लगातार 6 वर्ष तक घर में नजरबंद कर रखा गया और जुलाई 1995 को रिहा कर दिया गया, किंतु दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद के वर्षों में उसे हमेशा घर में नजरबंद रखा गया और कई बार जेल में डाला गया। 2008 में उसकी नजरबंदी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उसकी रिहाई के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। इस क्षेत्र के कुछ देशों में अक्सर उथल-पुथल मची रही और हिंसा की घटनाएं भी हुई। कुछ देशों में राजशाही का तख्ता पलटने की घटनाओं का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद हमेशा ही लोकतांत्रिक शासन स्थापित नहीं हुए। इस क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में धर्म निरपेक्षता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। यह बात अनेक एशियाई देशों पर लागू होती है। भारत एक ऐसे देश का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसके राजनीतिक जीवन का मूल आधार धर्म निरपेक्षता है, लेकिन यहाँ धर्म निरपेक्षता विरोधी प्रवृत्तियां भी मौजूद रही है। कुछ देशों में धर्म को राजनीतिक गतिविधियों और यहाँ तक कि राष्ट्रीयता के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ऐसे देशों का सबसे पहला उदाहरण पाकिस्तान है जिसका निर्माण मुस्लिम लीग के इस दावे के आधार पर किया गया कि भारत के मुसलमान एक अलग राष्ट्र है और इसलिए उनका एक अलग शासन होना चाहिए। इस क्षेत्र के कुछ भागों में धार्मिक राजनीतिक आंदोलन उठ खड़े हुए जिनमें धार्मिक नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह आंदोलन राष्ट्र को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वे अपने धार्मिक सिद्धांतों को अनुउल्लंघनीय मानते हैं और इस मत का समर्थन करते हैं कि सभी क्षेत्रों में से सिद्धांत राष्ट्रीय नीति का मूल आधार होने चाहिए। उनकी धर्म की संकल्पना अक्सर बहुधा कट्टर और रूढ़िवादी होती है। इनमें से कुछ देश अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए अथवा उन देशों के खिलाफ आतंकवादी तरीकों का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाते जो उनसे सहमत नहीं है। ऐसे आंदोलन को अक्सर धार्मिक कट्टरवाद के आंदोलन कहा जाता है। एशिया के कुछ देशों में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन चल रहे हैं। 3 एशियाई देशों चीन, उत्तरी कोरिया और वियतनाम में सत्ता साम्यवादियों दलों के हाथों में रही है। मंगोलिया में जिसने शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, पूर्व साम्यवादी दल एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना रहा। चीन का घटनाक्रम। गृह युद्ध में चीनी साम्यवाद दल की विजय और 1 अक्टूबर 1949 को चीनी जनवादी गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना का पहले उल्लेख किया जा चुका है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में साम्यवाद की विजय को विश्व को हिला देने वाली घटना समझा जाता था। अपने शासन के कुछ प्रारंभिक वर्षों के दौरान साम्यवादी दल ने आमूल परिवर्तनवादी भूमि सुधार किए और औद्योगिकीकरण का एक कार्यक्रम लागू किया। उसने सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि की और सोवियत संघ ने उसे आर्थिक, तकनीकी और सैनिक सहायता प्रदान की। चीन ने भारत के साथ भी मित्रता के संबंध बना लिए। 1954 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत ने तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया और चीन ने तिब्बत को एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी। इस समझौते में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत भी शामिल थे जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। 1950 वाले दशक के उत्तरार्ध से चीन की नीतियां बदलने लगी। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ के नेताओं द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देने के बारे में हम पहले बता चुके हैं। माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया जिसके बाद इन दोनों देशों के संबंध बिगड़ने लगे। 1960 के दशक का आरंभ होते होते दोनों देशों के बीच एक गहरी दरार पड़ चुकी थी। चीन सोवियत विभेद के कारण दुनिया भर के अनेक साम्यवादी दलों में फूट पड़ गई। तिब्बत में चीन की नीति में भी परिवर्तन आया और 1959 में दलाई लामा और उनके हजारों अनुयायियों को अपने देश से भागकर भारत आना पड़ा जहां वे तभी से शरणार्थियों के रूप में जीवन बसर कर रहे हैं। 1962 में जब चीन ने भारत के पश्चिमोत्तर में लद्दाख और पूर्वोत्तर में बसे अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया तो भारत और चीन के बीच सीमा युद्ध छिड़ गया। जहां तक चीन की आंतरिक नीतियों का संबंध है, इस काल को ग्रेट लीप फॉरवर्ड या लंबी छलांग के नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना था, किंतु वास्तव में हुआ इसका उल्टा। इसी काल में माओ जेडोंग की व्यक्ति पूजा शुरू हो गई। उसके चिंतन को अजेय बताकर उसका अत्यधिक गुणगान किया जाने लगा। चीन में 1966 से 1969 तक के दौर को सांस्कृतिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में चीन में राजनीतिक उथल-पुथल हुई। क्रांति जारी रखने के नाम पर छात्रों की भीड़ और लाल रक्षकों रेड गार्ड्स ने हजारों लोगों को अपमानित किया और उन्हें नौकरियों से निकाल दिया। उच्चतर शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए और स्वतंत्रता तथा सांस्कृतिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। चीन के आर्थिक जीवन में गंभीर अवरोध आ गया। 1970 वाले दशक के आरंभ में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश मिल गया। संयुक्त राज्य के साथ उसके संबंध भी सुधरने लगे। तब तक चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका था। 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु के उपरांत चीन में सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष शुरू हो गया। 1980 तक डेंग जियाओपिंग चीन का सबसे महत्वपूर्ण नेता बन चुका था। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से चीन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होने लगे। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान और इसके परिणाम स्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन को हुई क्षति को सुधारा जाने लगा। सोवियत संघ के साथ चीन के संबंध सामान्य हो गए और भारत के साथ उसके संबंधों में सुधार आया। चीन ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की और विशेष रूप से 1990 वाले दशक से चीन की अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। कई वर्षों से विकास की वार्षिक दर लगभग 11% पर टिकी हुई थी। हाल के वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था में दुनिया भर से सबसे अधिक तेजी से वृद्धि हुई और यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। इस अवधि के दौरान चीन में जिन आर्थिक नीतियों और आर्थिक सुधारों को अपनाया गया है, वे सभी उन नीतियों से पूरी तरह भिन्न हैं जिन्हें पहले समाजवाद के निर्माण के नाम पर अपनाया जा रहा था। वहां न केवल निजी उद्यमों का आरंभ और तीव्र गति से प्रसार हुआ, अपितु विदेशी निवेश भी भारी मात्रा में हुआ। आधिकारिक तौर पर नई व्यवस्था को बाजार समाज मार्केट सोशलिज्म कहा जाता है। आर्थिक विकास के साथ साथ समाज में असमानताएं भी बढ़ने लगी, जिनसे नए तनाव उत्पन्न हुए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी लोगों के जीवन स्तर में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देने लगा है। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को सौंप दिया, जो चीन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। स्मरण रहे कि हांगकांग, जो चीन का हिस्सा था, 1842 में हुए अफीम युद्ध के बाद ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। समय के साथ यह विश्व का प्रमुख आर्थिक केंद्र बन गया। यह चीन के विशेष प्रशासकीय क्षेत्र के रूप में चीन का हिस्सा बना, और इस दौरान इसने आंतरिक स्वायत्तता अपनाने के साथ साथ अपना उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी कायम रखा। हांगकांग एक और तो चीन का हिस्सा बना रहा, और उसके साथ साथ अपने स्वायत्तता और पूंजीवादी व्यवस्था भी बनाए रखी। इसी प्रणाली को एक देश दो प्रणाली कहा जाता है। इस बात पर ध्यान देना होगा कि चीन की आर्थिक नीतियों में बुनियादी परिवर्तन होने के बावजूद चीन की राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण रूप से चीन के साम्यवादी दल के नियंत्रण में रही। हालांकि अनेक वर्षों तक चीन के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर हावी रहने वाली सैनिक प्रणाली समाप्त तो हो चुकी थी, किंतु राजनीतिक लोकतंत्र की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई। 1980 वाले दशक के उत्तरार्ध में बीजिंग और चीन के कुछ प्रमुख शहरों में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन हुए। इसकी शुरुआत बीजिंग में अप्रैल 1989 में हुई, जब छात्रों ने बीजिंग के तायन मेन स्क्वायर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस आंदोलन को लोकतंत्र आंदोलन कहा जा रहा था। मई 1989 में छात्रों द्वारा बीजिंग में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे लोग भी शामिल हो गए और हजारों छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। तायन मेन स्क्वायर से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सरकार ने पीएलए, चीन की सेना को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, की टुकड़ियां 3 जून को बुला ली। उन्होंने वहां अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को हटना पड़ा और 4 जून को खाली कर दिया गया और आंदोलन को कुचल दिया गया। विदेशी मीडिया और प्रेक्षकों के अनुसार इस आंदोलन में तायनमेन स्क्वायर और शहर के अन्य स्थानों पर कई हजार लोग मारे गए। 1989 में घटी इस घटना के बाद देश की राजनीतिक प्रणाली में बहुत कम बदलाव हुए हैं। तथापि 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में चीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया है। द्वंद्व और युद्ध। 1945 के बाद एशियाई देशों में कई अन्य द्वंद्व और युद्ध हुए। इनमें अधिकांश युद्धों में दोनों महाशक्तियां प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई 1947 में दोनों देशों के आज़ाद होने के शीघ्र बाद हुई। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हो जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से और उसके सहयोग से कश्मीर पर हमला हुआ, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया। 1965 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने घुसपैठिए भेजे, तो भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी लड़ाई हुई। तीसरी लड़ाई 1971 में बांग्लादेश प्रश्न पर हुई, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। 1980 वाले दशक में पाकिस्तान ने पंजाब के आतंकवादियों को सहायता देनी शुरू कर दी, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव गहरा हो गया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से दोनों देशों के बीच प्रमुख रूप से इस विषय पर तनाव बना हुआ है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी तत्वों को समर्थन दे रहे हैं, और विशेष रूप से पाकिस्तान कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार दे रहा है। हालांकि दोनों देशों के नेताओं में बातचीत हुई है और उन्होंने वार्ताओं द्वारा कश्मीर समस्या का हल निकालने की प्रतिज्ञा भी की है, लेकिन पाकिस्तान में और विशेष रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षित हथियारबंद आतंकवादियों के नियंत्रण रेखा के पार से चोरी छिपे भारत में प्रवेश करने की घटनाएं जारी है। 1998 में दोनों देशों के बीच एक बार फिर कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में युद्ध छिड़ गई। मई 1998 में इस पहाड़ी क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर पाकिस्तानी सैनिक घुस आए। भारतीय सशस्त्र सेना और वायु सेना ने पाकिस्तान की फौजों को हरा दिया और पाकिस्तान को जान और माल का भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह युद्ध जुलाई 1998 में समाप्त हो गया और अधिकांश देशों ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। युद्ध कारगिल के इलाके तक ही सीमित रहा और दोनों देशों के बीच बड़ी लड़ाई में नहीं बदला। 1999 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ ने लोकतंत्रीय सरकार का तख्ता पलट दिया और पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। 2001 में भारत के प्रधानमंत्री और मुशर्रफ के बीच आगरा में एक शिखर बैठक का आयोजन किया गया, किंतु यह बैठक दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक समझौता हुए बिना ही समाप्त हो गई। 2008 में पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ को त्यागपत्र देना पड़ा। इन चुनावों में उसके द्वारा गठित राजनीतिक दल की करारी हार हुई। चुनावों से तत्काल पहले बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई, जो 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी थी और जिसने अन्य राजनीतिक दलों और समूहों के साथ मिलकर अपने देश में दोबारा लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया था। इसी बीच दोनों देशों के अनेक नागरिक दल दोनों देशों के लोगों के बीच शांति और सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए आपसी मेलजोल को बढ़ावा दे रहे थे। दोनों देशों की सरकारों ने भी संबंध सामान्य बनाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। उदाहरण के लिए दिल्ली और लाहौर के बीच रेल सेवाओं, जिसे संयुक्त से समझौता एक्सप्रेस कहा जाता है, और बस सेवाओं की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, के बीच सड़क मार्ग खुल गया है। सेना का शासन समाप्त होने और लोकतंत्र पुनर्स्थापित होने से दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द संबंध को आगे बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ गई है। 1998 से दोनों देश परमाणु शक्ति बन गए हैं, जिसके कारण दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द संबंध कायम रखना पहले से अधिक अनिवार्य हो गया है। 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध भड़क उठा। दोनों देशों के बीच कुछ सीमा विवाद और कुछ एक राजनीतिक मतभेद भी थे। यह लड़ाई 8 वर्षों तक चली, जिसमें दोनों देशों के हजारों लोग मारे गए और उनकी अर्थव्यवस्था को भी गंभीर क्षति पहुंची। 1991 में इराक तथा संयुक्त राज्य सहित कई अन्य देशों के बीच लड़ाई छिड़ गई। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। जब वह अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके खिलाफ सैनिक आक्रमण करने की अनुमति दे दी। 17 जनवरी 1991 को लड़ाई छिड़ गई, जिसमें दोनों पक्षों ने बड़े पैमाने पर प्रेक्षापास्त्रों का प्रयोग किया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह पहली बड़ी लड़ाई थी, जिसमें संयुक्त राज्य की सेना ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। अंततः यह लड़ाई 28 फरवरी 1991 को उस समय समाप्त हो गई, जब संयुक्त राज्य और उसके मित्र देशों की फौजों ने कुवैत और इराक की सीमा में प्रवेश किया और इराक ने अपनी सेना को कुवैत से हट जाने का आदेश दिया। इस लड़ाई में अनेक लोगों की मृत्यु हुई और इराक की अर्थव्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय। 1947 में भारत के विभाजन के बाद बने पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों हिस्सों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र पड़ता था। दोनों हिस्सों को केवल धर्म ने ही एक दूसरे से जोड़ कर रखा था, क्योंकि दोनों हिस्सों के अधिसंख्य लोग मुसलमान थे। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि धर्म राष्ट्रीयता का आधार नहीं हो सकता। पाकिस्तान के निर्माण के तत्काल बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व अवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान ने किया था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की कुल जनसंख्या पाकिस्तान की कुल आबादी के आधी से अधिक थी, लेकिन सरकार और सशस्त्र सेना में पश्चिमी शक्तियों का बोलबाला था। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान का आर्थिक शोषण किया जाता था और पूर्वी पाकिस्तान की भाषा, बांग्ला और संस्कृति को दबाने का भरसक प्रयास किया जाता था। दिसंबर 1970 में हुए चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। उसे 169 में से 168 स्थान प्राप्त हुए। आशा की जा रही थी कि पाकिस्तान अब एक संघीय संविधान तैयार करेगा जिससे पूर्वी पाकिस्तान को निश्चित रूप से अधिक स्वायत्तता मिल सकेगी। यह उम्मीद भी थी कि पाकिस्तान में आवामी लीग को बहुमत प्राप्त होने के कारण मुजीबुर रहमान केंद्र में सरकार बनाएगा, लेकिन नवनिर्वाचित असेंबली की बैठक नहीं होने दी गई, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज दी गई और मुजीबुर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके शीघ्र बाद बांग्लादेश ने एक स्वतंत्र राष्ट्र होने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए एक छापमार सेना खड़ी कर ली। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग शरणार्थी के रूप में भारत की सीमाओं में घुस आए। भारत में लाखों शरणार्थियों को आ जाने के से भारत के लिए कठिनाई उत्पन्न हो गई और उसने 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के लोगों के समर्थन में हस्तक्षेप किया। पाकिस्तानी फौजों ने 16 दिसंबर को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। जनवरी 1972 को मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया और अपने देश लौटने पर वह बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री बना। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ऐतिहासिक महत्व की महान घटना थी। यह धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर गंभीर प्रहार था। बांग्लादेश में स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता और सैनिक शासन का दौर रहा। 15 अगस्त 1975 को बंग बंधु के नाम से लोकप्रिय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले और बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों सहित हत्या कर दी गई। इसके बाद वहां सैनिक शासन लागू हो गया और जनरल जिया उर रहमान राष्ट्रपति बना। 1981 में जिया की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जनरल इरशाद ने सत्ता संभाली। उसने त्यागपत्र दे दिया और 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुए, जिसके बाद जिया उर रहमान की विधवा खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली। 1996 में शेख मुजीबुर रहमान की जीवित बची पुत्री और अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने चुनावों में जीत हासिल की और वह प्रधानमंत्री बनी। 2001 में अवामी लीग पराजित हुई और एक बार फिर खालिदा जिया सत्ता में आई। देश में व्यापक रूप से राजनीतिक अशांति का दौर बना रहा। धार्मिक कट्टरपंथियों की संख्या और शक्ति में वृद्धि हुई। 2006 में होने वाले चुनाव आयोजित नहीं किए गए। जनवरी 2007 में सेना की सक्रिय सहायता से एक कामचलाऊ सरकार ने सत्ता संभाली और शीघ्र चुनाव कराने का वादा किया। बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया, जिनमें शेख हसीना और खालिदा जिया भी शामिल थी। दिसंबर 2008 में हुए चुनावों में बांग्लादेश आवामी लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। लीग को 300 में से 230 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। शेख हसीना को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्षेत्रीय समूह तनावों और लड़ाइयों के बावजूद एशियाई देशों में ऐसे कई समूह उभरे जिनका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। 1945 में अरब लीग की स्थापना हुई, जिसमें फिलिस्तीन सहित 21 अरब देश शामिल है। 1967 में आसियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना हुई, जिसके सदस्यों में मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया शामिल हैं। जुलाई 1995 में वियतनाम इसका 7वां सदस्य बना। इनमें से अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्थाएं विश्व की तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से है, और आसियान ने अपने प्रत्येक सदस्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जुलाई 1995 में वियतनाम आसियान का 7वां सदस्य बना। यह एक अन्य बड़ा क्षेत्रीय समूह सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षेस है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें 7 देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आदि शामिल हैं। अप्रैल 2007 में इसके 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बन गया। इनमें से कुछ देशों के संबंध तनावपूर्ण होने के कारण अब तक सार्क की वास्तविक उपलब्धि सीमित रही है। राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुई थी, किंतु इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नया रूप ग्रहण किया। इसकी शुरुआत स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों के संघ के रूप में हुई थी, और तब इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल और साम्राज्य, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड एम्पायर कहा जाता था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो इसका स्वरूप बदल गया। अब न वह ब्रिटिश रह गया और ना ही साम्राज्य, बल्कि उन स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ बन गया जो पहले ब्रिटिश उपनिवेश थे। इसके सभी सदस्य अपने घरेलू और विदेशी मामलों में अपनी स्वतंत्र नीतियों का पालन करते हैं। इसका बहुप्रजातीय स्वरूप और इसके साथ साथ इसके सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों ने राष्ट्रमंडल को एक अत्यधिक उपयोगी समिति का दर्जा प्रदान किया है, जहां इसके सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।